सर्वशक्तिमानता का विरोधाभास। जब लोग गाजा में तबाही देखते हैं तो अक्सर यह सवाल उठता है, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह ऐसा क्यों होने देता है? यह बुराई की प्राचीन समस्या है जो बच्चों के मलबे में दबे होने और परिवारों के उन नुकसानों पर शोक करने की छवियों से और तीखी हो जाती है जो नाम लेने के लिए बहुत बड़े हैं। दार्शनिकों ने एक समय इस समस्या को अमूर्त रूप से प्रस्तुत किया था, क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जो इतना भारी हो कि वह स्वयं उसे उठा न सके? गाजा में यह विरोधाभास अब शैक्षणिक नहीं है, यह गहरा और अनुभवजन्य है। यदि ईश्वर हत्याओं को रोक सकता है तो वह ऐसा क्यों नहीं करता? कुरान और व्यापक अब्राहमिक परंपरा एक आश्चर्यजनक उत्तर देती है, ईश्वर ऐसे तरीकों से कार्य नहीं करता जो उसके स्वयं के प्रकट किए गए सिद्धांतों के विपरीत हों। उसकी शक्ति असीमित है लेकिन उसका न्याय सिद्धांतों पर आधारित है। सर्वशक्तिमान एक अत्याचारी नहीं है जो नैतिकता को अपनी इच्छा के अधीन करता है, बल्कि वह केवल वही चाहता है जो उसके द्वारा घोषित न्याय और दया के अनुरूप हो। यही है सर्वशक्तिमानता का विरोधाभास। ईश्वर की ताकत अपने स्वयं के नियमों को तोड़ने में नहीं बल्कि उन्हें बनाए रखने में दिखाई देती है, भले ही इसका मतलब यह हो कि मानव की बुराई अनियंत्रित रह जाए। ईश्वरीय स्वसीमा, संगति की कीमत। कुरान घोषणा करता है, जो कोई एक आत्मा को मारता है वह ऐसा है जैसे उसने पूरी मानवता को मार डाला, और जो कोई एक को बचाता है वह ऐसा है जैसे उसने पूरी मानवता को बचा लिया। अल माईदा 5:32। यहूदी परंपरा इसे पिकुआच नेफेश सिद्धांत में प्रतिबिंबित करती है, जीवन बचाने की बाध्यता जो लगभग हर अन्य आज्ञा को ओवरराइड करती है। थलमूड इसे सन्हेद्रिन 90A में और गहरा करता है, जहां जीवन का संरक्षण ईश्वरीय न्याय के आधार से जुड़ा हुआ है। इस्लाम की सुन्ना, ईश्वरीय रिवाज और यहूदी धर्म का व्रत, संविदा दोनों एक ऐसे ईश्वर का वर्णन करते हैं जो क्रूर बल के साथ कार्य करने के बजाय संबंध प्रत निष्ठा से बंधा होता है। विनाशकारी हस्तक्षेप आक्रामकों को सामूहिक रूप से नष्ट करना उस नैतिक व्यवस्था को उधेड़ देगा जिसे ईश्वर बनाए रखता है। यह सृष्टिकर्ता को उस अराजकता में बदल देगा जिससे वह घृणा करता है। इसके बजाय कुरान स्पष्ट करता है, यदि अल्लाह कुछ लोगों को दूसरों के माध्यम से नियंत्रित न करता तो मठ, गिरजाघर, सभास्थल और मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है, नष्ट हो जाती। अलहज 22:40। ईश्वर का पसंदीदा तरीका एकतरफा विनाश नहीं बल्कि मध्यस्थता द्वारा नियंत्रण है, कुछ को दूसरों के माध्यम से नियंत्रित करना। यह विरोधाभास का कार्यरूप है, सर्वशक्तिमानता जो स्वेच्छा से सिद्धांतों से बंधी हुई है। ईसाई परंपरा इस ईश्वरीय संगति के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है। गेतसेमनी में यीशु ने अपने अनुयायियों को फटकार लगाई, अपनी तलवार को उसके स्थान पर वापस रखो क्योंकि जो लोग तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही मरेंगे। मत्ती 26:52। सिद्धांतों से बंधी शक्ति न कि कच्चा प्रतिशोध। शहादत की सांत्वना, क्षितिज के परे एक क्षितिज। जहां मनुष्य अपूर्णीय क्षति देखते हैं, कुरान एक अलग क्षितिज को प्रकट करता है। यह मत सोचो कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं वे मृत हैं, बल्कि वे अपने रब के पास जीवित हैं, उनकी रोजी दी जाती है और वे उस चीज में आनंदित हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपनी कृपा से दी है। आली इमरान 3:169-171। यह एक घिसापिटा वाक्यांश नहीं बल्कि एक अंतिम समय का अवज्ञा है। जो लोग अन्यायपूर्वक मारे गए हैं वे इतिहास में फुटनोट नहीं हैं, बल्कि अनंतकाल के प्रमुख पात्र हैं। उनकी खुशी उनके हत्यारों के लिए एक तिरस्कार है, उनकी उन्नति उनके कष्टों का औचित्य है। इस विश्वास ने मक्का में सताए गए शुरुआती मुसलमानों से लेकर आज के फिलिस्तीनी समुद्र दृढ़ता तक के प्रतिरोध को प्रेरित किया है। गाजा में जहां लाखों लोग विस्थापित हैं और भुखमरी बचे हुए लोगों का पीछा करती है, यह दृढ़ विश्वास कि शहीद अपने रब के पास जीवित हैं पलायनवाद नहीं बल्कि जीवित रहने का साधन है। यह शोक को सहनशक्ति में, मलबे को साक्ष्य के वेदियों में बदल देता है। फिर भी कुरान का वादा मानवीय दर्द को मिटाता नहीं है। परिवार रोते हैं, माताएं विलाप करती हैं, पिता अपने बच्चों को दफनाते हैं। पहली प्रतिक्रिया है शोक, विलाप और क्रोध, क्योंकि प्रेम अलगाव का विरोध करता है। लेकिन फिलिस्तीनी लोगों के बीच यह शोक अक्सर कुछ और में बदल जाता है, यह स्वीकार करना कि उनके प्रियजन गाजा के खंडहरों में और पीड़ा से बचे हुए हैं, ईश्वर की इच्छा की स्वीकृति और परलोक में पुनर्मिलन की धैर्यपूर्ण आशा। उनका विश्वास मृत्यु को न केवल हानि के रूप में बल्कि मुक्ति के रूप में भी पुनर्परिभाषित करता है, पृथ्वी की यातनाओं से मुक्ति और ईश्वर की दया में मुक्ति। यही कारण है कि गाजा में अंत्येष्टि, हालांकि आंसुओं में डूबी हुई हैं, अल्लाहु अकबर के नारों से भी गूंजती हैं। यह एक साथ विलाप और पुष्टि है, एक ऐसा समुदाय जो यह विश्वास करना चुनता है कि शहीद नष्ट नहीं हुए, बल्कि सम्मानित हैं, अनुपस्थित नहीं, बल्कि प्रतीक्षित हैं। यह भी विरोधाभास का हिस्सा है, जबकि ईश्वर हत्या को रोकने के लिए अपने कानून को तोड़ने से इनकार करता है, वह अपने पीड़ितों को शून्यता में छोड़ने से भी इनकार करता है। ईश्वर की नैतिक शुद्धता, अस्वीकृत रक्त का गूंज। विरोधाभास का एक और आयाम है ईश्वरीय शुद्धता। हत्या के माध्यम से हस्तक्षेप करने से इनकार करके ईश्वर अपराध को पूरी तरह से अपराधियों पर छोड़ देता है। प्रत्येक गोली चलाई गई, प्रत्येक बम गिराया गया, प्रत्येक भूखा बच्चा दाग केवल उनके लिए है। जो कोई एक परमाणु के वजन जितना अच्छा करता है वह उसे देखेगा, और जो कोई एक परमाणु के वजन जितना बुरा करता है वह उसे देखेगा। अलसलसला 99:7-8। आज गाजा की मिट्टी खून से लथपथ है, और पुकार एक भाई की आवाज नहीं बल्कि लाखों की है। 680,000 निर्दोषों का खून गाजा की जमीन से ईश्वर की ओर पुकारता है, जैसे कभी हाबिल का खून जमीन से स्वर्ग की ओर पुकारा था। तेरे भाई के खून की आवाज जमीन से मेरी ओर पुकार रही है। तूने क्या किया? उत्पत्ति 4:10। न्याय के दिन शरीर स्वयं अभियोजक बन जाएगा, अपने मालिक को धोखा देगा। उस दिन हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे, और उनके हाथ हमसे बात करेंगे, और उनके पैर उसकी गवाही देंगे जो उन्होंने कमाया था। यासीन 36:65। और दोषियों की प्रतीक्षा में बिना राहत के यातना है। वह उसे घूंट घूंट करके पिएगा, लेकिन उसे निगलने में मुश्किल होगी। मृत्यु हर तरफ से उसके पास आएगी, फिर भी वह मरेगा नहीं, और उसके सामने एक विशाल सजा होगी। इब्राहिम 14:17। तलमूद कोई संदेह नहीं छोड़ता। दुष्टों का आने वाली दुनिया में कोई हिस्सा नहीं है। सन्हेदरिन 90a। परंपराओं में फैसला सर्वसम्मत है, ऐसा सामूहिक नरसंहार केवल एक पाप नहीं है जिसे गेहन्नम में शुद्ध किया जा सकता है, बल्कि स्वयं ईश्वर के नाम का दुरुपयोग है। यह पिकुआच नेफेश जीवन बचाने को प्राथमिकता देने के आदेश का उल्लंघन करता है, और उस सत्य का मजाक उड़ाता है कि मनुष्य बेत्सेलिम एलोहिम ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं। यह उसकी आज्ञाओं का खुला अवज्ञा और एक अपवित्रता है जिसका परिणाम शाश्वत बहिष्कार है। मौन की निंदा दर्शक सह अपराधी के रूप में। लेकिन विरोधाभास और भी आगे बढ़ता है, ईश्वर का अपने स्वयं के कानून को तोड़ने से इनकार करने का मतलब है कि दुनिया की परीक्षा ली जाती है और दर्शक उजागर हो जाते हैं। शास्त्र न केवल अपराधियों की बल्कि उन लोगों की भी निंदा करते हैं जो देखते हैं और कुछ नहीं करते। हमने निश्चित रूप से नरक के लिए जिन्नों और मनुष्यों में से कई को बनाया है। उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं, आँखें हैं जिनसे वे देखते नहीं, और कान हैं जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह हैं, नहीं इससे भी अधिक भटके हुए। ये वही हैं जो लापरवाह हैं। अल अराफ 7:179। यह इतिहास के पशुओं के खिलाफ एक गर्जना है, सरकारें जो युद्धविराम को वीटो करती हैं, मीडिया जो दोनों पक्षों को बराबर करता है, नागरिक जो मलबे को स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं। नरसंहार के सामने तटस्थता सह अपराध है। थलमूद कहता है, कोल इसराइल रेबिन से बजे, सारा इसराइल एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है। आत्मा में यह सार्वभौमिक है, पूरी मानवता जिम्मेदारी में एकजुट है। मौन तटस्थता नहीं है, यह विश्वासघात है। गाजा में सर्वशक्तिमानता का विरोधाभास। यहाँ विरोधाभास और तीखा हो जाता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, फिर भी वह स्वयं को अपने नैतिक कानून से बांधता है। वह हत्या को रोकने के लिए हत्या नहीं करेगा। वह अन्याय को रोकने के लिए अन्याय नहीं करेगा। इसके बजाय वह मानव की बुराई को स्वयं को उजागर करने देता है, और ऐसा करके वह अंतिम न्याय के लिए अपनी नैतिक शुद्धता को संरक्षित करता है। शहीदों के लिए इसका मतलब है सांत्वना, उनका खून खोया नहीं है बल्कि साक्ष्य और सम्मान में बदल गया है। अपराधियों के लिए इसका मतलब है निंदा, उनके अपराध उनके खिलाफ चिल्लाते हैं, उनके अपने शरीर गवाही देंगे, और उनकी नियति शाश्वत बहिष्कार है। दर्शकों के लिए इसका मतलब है उजागर होना, उनकी चुप्पी सह अपराध है, उनकी तटस्थता निंदा है। निष्कर्ष। सर्वशक्तिमानता का विरोधाभास एक अमूर्त पहेली नहीं बल्कि गाजा में जिया गया यथार्थ है। यह हमें दिखाता है कि ईश्वर की शक्ति मनमानी नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। उसने संयम चुना है, और इस संयम में निर्दोषों के लिए सांत्वना और दोषियों के लिए निंदा दोनों निहित हैं। अपराधियों के लिए उनके अपने शरीर उनके खिलाफ गवाही देंगे, उनकी यातना अंतहीन होगी, उनके अपराध स्वयं मिट्टी से गूंजेंगे। दर्शकों के लिए मौन ही निंदा है। शहीदों के लिए मृत्यु के परे जीवन है, शोक के परे खुशी है। राजा के मलबे से ईश्वर की अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं उभरता, बल्कि एक दोहरी सच्चाई उभरती है कि मानव क्रूरता वास्तविक है और ईश्वरीय न्याय अनिवार्य है। जो सवाल बाकी है वह यह है कि क्या हम, जो अभी भी सांस ले रहे हैं, इस विरोधाभास को पहचानेंगे और उस जीवन के कानून के अनुसार जिएंगे जो ईश्वर ने स्थापित किया है, मारने के बजाय बचाना।